ओम शांति। योग की यथार्थ विधि से सिद्धि स्वरूप बनना, हम सभी मनुष्य से देवता बनने की यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, जहां स्वयं भगवान हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, और उसमें भी चार सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चारों सब्जेक्ट में हमारा मुख्य सब्जेक्ट है योग का, और प्रायः देखा जाता है कि योग के बारे में बहुत लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, योग को कठिन अनुभव करते हैं। तो हम आज आपके साथ ऐसी कुछ बातें शेयर करने जा रहे हैं जिससे आपका योगाभ्यास सदा के लिए सरल हो जाएगा। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं कौन सी हैं? बोलो। हम बच्चे? हम बच्चे तो बहुत हो गए, अभी लाखों बच्चे हो रहे हैं बाबा के। हाँ जी, इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है, उससे ऊंचा भाग्य इस संसार में है ही नहीं। कौन सा भाग्य उनको प्राप्त होता है? योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन भगवान के नैनों का नूर वो बनते हैं। भगवान के नैनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है, और वो केवल योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों में स्वयं भगवान नूर बनकर रहते हैं। इस संसार में सबसे बुद्धिमान कौन है? बोलो। हाँ जी, हाँ, ज्ञानी आत्मा है। इस संसार में सबसे बुद्धिमान है योगी आत्माएं। चाहे किसी ने कितनी भी डिग्रियां ली हो यूनिवर्सिटी की, लेकिन इन सबसे बढ़कर चढ़कर हैं योगी आत्माएं बुद्धिमान। उनके पास दो कलाएं होती है जो किसी के पास नहीं होती हैं। पहली कला ये होती है कि तीनों लोगों में सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला ठिकाना है परम धाम में शिव बाबा की याद करना। उसी ठिकाने पर वो अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं और हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की कमाई करते ही रहते हैं। ये अकल उनके पास होता है। और दूसरी कला उनके पास होती है माया दुश्मन के राज में रहकर दुश्मन के वार से सदा मन बुद्धि को वो सेफ रखते हैं। ये कला उनके पास होती है। चतुर सुजान बाप के वो चतुर बच्चे कहलाते हैं। कभी भी दुश्मन से धोखा वो नहीं खाते हैं। जितनी महिमा शास्त्रों में परमात्मा की गई हैं, योगियों की महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जैसे परमात्मा पालनहार इस संसार के हैं, वैसे योगी आत्माएं इस संसार की पालना करते हैं, एक तरफ परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और दूसरे तरफ अनेक आत्माओं को बांटते रहते हैं, मालामाल करते रहते हैं। ऐसी पालना देने के कारण उनकी महिमा शास्त्रों में बहुत की है। भगवान भी ये कहते हैं कि योगी आत्माएं मेरे सच्चे सहयोगी बच्चे हैं, निरंतर सहयोगी बच्चे हैं। दूसरी आत्माएं तो तन मन धन से कभी कभी तो सेवा करते हैं, लेकिन योगी आत्माएं अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा निरंतर इस संसार में प्रेम पवित्रता के आनंद के वाइब्रेशन फैलाकर नई दुनिया के स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी बनते रहते हैं। इसलिए मास्टर भगवान का टाइटल भी उनको मिलता है। संगम युग में वरदानों के सागर बाबा हमें मिले हैं, तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा वरदान है योगी भाव का वरदान। जिन्हों को योगी भाव का वरदान मिलता है उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिलते जाते हैं। इसलिए संगम युग में बाबा का बच्चा बनने के बाद मुझे योगी भाव का वरदान लेना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा होगा तो हमें जरूर वो मिलेगा। समझा? इसलिए हमें क्या करना है, बहुत मस्ती से याद करना है, बहुत बड़ी हस्ती के साथ बैठकर योग करना है और कमाई करते जाना है। ठीक है, बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मोज बाप को याद करो। इसमें तीन बातें हैं, इन तीन बातों को अगर हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो योगाभ्यास हमारा आगे ही आगे बढ़ता जाता है। स्वयं को आत्मा समझो, यथार्थ रीति से बाप को समझो और यथार्थ रीति से कनेक्शन जोड़ के रखो। तो पहली बात, तो स्वयं को यथार्थ रीति से आत्मा क्यों समझे और कैसे समझे, उसकी विधि क्या है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना जरूरी है। हमने देखा है मुरली में बाबा बार बार ये दोहराते हैं, मीठे बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, हमारे पीछे पड़ा रहता है बाबा। क्यों भाई? क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है और यही अंतिम पाठ है और यही सबसे पहला पाठ है। तो जो इसको रियलाइज करते हैं वो बाबा के पास आने के बाद बहुत अच्छी तरह से योग का अनुभव करने के लिए आत्म अभिमानी स्थिति की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते जाते हैं। हम देखते हैं 84 जन्मों का ये होमवर्क है, 63 जन्मों का आत्मा में कूट कूट कर जो आत्मा देह का भान भरा पड़ा है उस भान को हमें हटाना है, मिटाना है। और 21 जन्म के लिए नेचुरल हमारा आत्मा का बांध बना रहे वो भी हमें घर जाने के पहले जुटाना है। तो कितने जन्म का होमवर्क हो गया? 84 जन्मों का हो गया। और हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, अब ये थोड़े समय में हमें बहुत अच्छी तरह से ये होमवर्क पूरा करना है। तो आप पूछो अपने से कि कितनी मेहनत आपको इस अभ्यास पर करनी होगी। यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर क्या पढ़ाते हैं? क्या ए पढ़ाते हैं? तो देखो कितनी भी बड़ी डिग्री लेनी हो तो ए सीखना ही होगा। यहां वैसे ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लेते हैं, डिग्री हमें मिलती है, तो पहला अक्षर हमें बाबा क्या सिखाते हैं? ए, आत्मा समझो। तो ए लिखना आना माना आत्मा अनुभव करना आना। आत्मा का ज्ञान मेरे पास है लेकिन अनुभव नहीं तो फायदा क्या है, ज्ञान तो अधूरा रह गया। इसलिए हमें क्या करना है, आश्चर्य स्थिति के अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते जाना है, समझा। तो बार बार बाबा आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो कहते हैं, क्योंकि 24 घंटे हमें देह का भान रहता है, 24 घंटे झूठा भान। तो ऐसे ही 24 घंटे आत्मा का भान रहे तब तक हमें इसको अभ्यास को पक्का करते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। तो अभी अच्छी तरह से आत्मा समझने के लिए उसकी विधि क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। विधि बड़ी सरल है, विधि को अगर हम समझते हैं तो आत्मा की सिद्धियां और जो शक्तियां हैं, ये जो विशेषताएं हैं, प्रतिभा हैं, वो सब कुछ हमारे पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। एक बार तालियां बजाओ जरा अच्छी तरह से, जोर से बजाओ, जोर से। आत्मा की अनुभूति करने की विधि क्या है, हम इस चेहरे को देखते हैं आईने में, कौन सी आंखों से, इन आंखों से, स्थूल आंखों से। तो ऐसे आत्मा की अनुभूति करने के लिए आत्मा को देखना होगा, तभी अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। आत्मा को देखेंगे आत्मा की आंख से ही। भाई आत्मा की आंख कौन सी है, हाँ जी बोलिए, हाँ दिव्या बोलो ना। हम सभी अंधे की औलाद अंधे थे, टोकरे खा रहे थे, बाबा को ऊपर से देख रहे थे, बाबा को दया आ रही थी। अभी मुझे जाकर बच्चों को दिव्य नेत्र देना है, तीसरा नेत्र देना है, तो बाबा ने आते ही हमें दिव्य नेत्र दिया, ज्ञान चक्षु दिया, बुद्धि रूपी नेत्र दिया। वो नेत्र किधर है भाई, किधर है वो नेत्र, हाँ कहाँ है वो नेत्र बोलो ना। नेत्र ही नहीं दिया, लेकिन बाबा उस नेत्र में ज्ञान का अंजन डालने के लिए हर रोज ऊपर से आते हैं, ताकि मेरे बच्चों की आंखों की रोशनी बहुत अच्छी तरह से बनी रहे। मैं आपको दो प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न, क्या आपने शांति स्तंभ को देखा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बोलो ना। आप तो मुझे देख रहे हैं फिर भी आंख दिखाई दे रहा है शांति स्तंभ। अच्छा दूसरा प्रश्न पूछता हूं, शांति स्तंभ कैसा है बताइए, उसके बारे में कुछ दो चार बातें बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ब्रह्मा बाबा की स्थिति का यादगार है शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति स्तंभ, ऐसी चारों बातों का जिक्र वहां किया है, बहुत अच्छी तरह से बातें बताते रहेंगे। तो देखने वाली शक्ति है बुद्धि, जो शांति स्तंभ को देख रही है अभी, वो देखने वाली शक्ति है बुद्धि, और सोचने वाली शक्ति है मन। ये अच्छी तरह से एकांत में बैठकर अंतर को स्पष्ट अनुभव करना है। आत्मा समझने के बाद ये जो शांति स्तंभ को देखने वाली शक्ति है, ये मेरा बुद्धि रूपी नेत्र है, और उस पर जो सोचने वाली शक्ति है, ये मेरा मन है। ये दोनों को अच्छी तरह से अंतर को समझते हैं तो योग आपको सदा के लिए सरल हो जाता है। लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है, उसके कारण योग उनको कठिन लगता है, ठीक है भाई। तो विधि क्या है, एकांत में हमें बैठना है, बुद्धि रूपी नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में देखना है कि मैं कौन हूं। मैं एक अजीब सितारा हूं और एक गजब का सितारा हूं। भाई अजीब सितारा क्यों हूं, क्योंकि आसमान के सितारे देखने के लिए ये आंखों से दिखाई देते, लेकिन ये गजब का सितारा, इसको देखने के लिए विशेष नेत्र चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए, बुद्धि रूपी नेत्र चाहिए। इसलिए अजीब सितारा हो और गजब का सितारा क्यों हो, इस छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इसलिए गजब का सितारा हो। तो देखो यहां और उसमें स्थित हो जाओ, मैं ये चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, कैसा हूं। फिर आत्मा के जो 7 गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति, वो एक के बाद हमें एक अच्छी तरह से अनुभव करते जाना है। जैसे जैसे अनुभव करते जाएंगे, आत्मा का प्रकाश जो है बहुत अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा, आत्मा का आभा मंडल जो है धीरे धीरे विकसित होता जाएगा, विशाल होता जाएगा। ठीक है, अभी इस अभ्यास को आप 5 साल से 10 साल से 20 साल से कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपको यह अभ्यास आगे बढ़ रहा है या नहीं, है जी? पता तो चलना चाहिए ना। जैसे हम कोई थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं तो पता चलता है, पहले बुखार 102 था, आज भी बढ़ गया है, थर्मामीटर दिखाता है। तो ऐसे आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं तो आत्मा का अभ्यास बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कैसे पता चलेगा, हाँ जी बोलिए ना। उसके 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स से आपको पता चलेगा आप कहां खड़े हैं, आपको कितना अभ्यास और करना है, कितना आपने किया है। तो बाबा के पास आते ही हम आत्मा का अनुभव करते हैं, तो पहली स्टेप अनुभव होती है आत्मिक स्मृति में टिकना। जैसे जैसे आत्मिक स्मृति हमारी पक्की होती जाती है, दूसरी स्टेप है आत्मिक स्थिति में स्थित होना, आत्मा के भान में स्थित होना। और जैसे जैसे हम स्थित होते हैं तो तीसरी स्टेप आती है आत्मिक दृष्टि पक्की होना। जो हमारे सामने आता है उसके भ्रुकुटी में हमें आत्मा नजर आती है, आत्मिक दृष्टि हमारी बढ़ती जाती है। और उसके बाद 4th स्टेज है आत्मिक वृत्ति, अर्थात आत्मा के भान में स्थित होना, ये अभ्यास नेचुरल होना, बहुत अच्छी तरह से अभ्यास पक्का होते जाना, उसको कहेंगे आत्मिक वृत्ति पक्की होना। और उसके बाद जो है वो है आत्मिक कृति, अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मा के भान में स्थित रहना। और लास्ट है आत्म अभिमान स्थिति के संस्कार पक्के होना। जो संस्कार हम अपने साथ में लेके जाते हैं उनके आधार से फिर हमें सतयोग में आत्मिक स्थिति हमारी नेचुरल रहती है। तो हमें पूछना है कौन सी सीढ़ी पर मैं अभी खड़ी हूं और हमें कितने मजे मदद करना है। 24 घंटे आत्मा का भान रहे, चाहे हम कुछ भी कर रहे, काम कर रहे, जो भी कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे आत्मा का भान सदा रहे, इस पर हमें मेहनत करना है। समझा? तो आत्मा का अनुभव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आत्मिक स्थिति पक्की होती जाती है, तो दूसरी बात आती है, परमात्मा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति से बहुत थोड़े बच्चे मुझे जानते हैं, बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं। ऐसा क्यों कहता है भाई बाबा? हाँ जी, हम बाबा को नहीं जानते इसलिए तो बैठे हैं, जानते इसलिए तो बैठे। फिर भी बाबा कहते मेरे इतने जो ढेर बच्चे हैं उनमें से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। बोलो, नहीं जानते बाबा को? इस संसार में एक ही ब्रह्मा बाबा की आत्मा है जिन्होंने 100% भगवान को पहचाना है, बाकी दूसरों ने पहचाना है लेकिन नंबरवार पहचाना हुआ है। तो हमें बाबा के पर्सनालिटी को देखना है, अनुभव करना है और हमारा प्यार बाबा की तरफ ट्रांसफर करते जाना है, क्योंकि जितना हम बाबा को पहचानते हैं उतनी ही बाबा की तरफ हमारा दिल का सच्चा प्यार ट्रांसफर करते हैं। तो बाबा का सबसे पहले हम स्वरूप जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा कैसे हैं। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे बाप का स्वरूप वैसे बेटे का स्वरूप, अंतर क्या है? जो आत्मा में सात गुण हैं, उन आत्मा उन सात गुणों के बाबा सागर है, बिंदु हैं लेकिन सात गुणों के सिंधु है, सागर है। आप सोचो तो सही कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी, शांति के सागर, शक्ति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, बापरे बापरे कितनी वो पावरफुल बिंदु होगी, होगी ना भाई। तो बिंदु है बाबा का स्वरूप, लेकिन सात सिंधु उस बिंदु में समाये हुए हैं, इसलिए बहुत शक्तिशाली वो बिंदु हैं। लेकिन क्या हुआ है, बाबा को अर्जुन ने जैसा साक्षात्कार हुआ तो अर्जुन वर्णन कर रहा था, अर्जुन का परमात्मा का स्वरूप इतना तेजोमय है, बस करो भगवान बस करो, मैं इससे जास्ती आपके स्वरूप को सहन नहीं कर सकता हूं, तेज को सहन नहीं कर सकता हूं, ऐसे अर्जुन ने कहा। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि परमात्मा एक ज्ञान सूर्य है, परमात्मा की जो शक्तियां है वो अथाह है, इसलिए अर्जुन ने कहा भगवान का स्वरूप जो है हजारों सूर्य से तेजोमय है, परमात्मा का स्वरूप हजारों इससे तेजोमय नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से शक्तिशाली है ना भाई, शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है, ये जो साकारी दुनिया का सूर्य है इससे कई गुना शक्तिशाली परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा एक ज्ञान सूर्य है, परमात्मा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड सागर है ना। आज थोड़ी सुस्ती लग रही है आप लोगों को, सारे सुस्ती में बैठे हैं ऐसा लग रहा है, नींद आंखें भी बंद कर रहे हैं कोई है जी, कहां ध्यान से सुन रहे, कोई तो आंखें बंद कर रहे हैं मस्ती से, हाँ है सुस्ती है थोड़ी, मैं तो देख रहा हूं कोई आंखें बंद कर रहे हैं, हाँ जी बोलो ना, सुस्ती उतारना है क्या, हाँ जी बोलो ना, टीचर बहने बताओ सुस्ती है ना थोड़ी सी, नहीं है पीछे वाले, तो एक बार और ताली अच्छी तरह से बजाओ तो फिर पता चलेगा। तो परमात्मा का स्वरूप हमें ऐसा शक्तिशाली परम धाम में देखना है और अनुभव करना है। परमात्मा का नाम क्या है भाई, किस नाम से पुकारते हैं उनको, सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीनों शब्द का नाम किसी का नहीं है दुनिया में, किसी का सत्यम होगा, किसी का शिवम होगा, किसी का सुंदरम होगा, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम किसी का नहीं। सत्यम अर्थात परमात्मा सत्यता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं, सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं और नई सतयुग इस धरती पर लाते हैं। कितनी उनके पास सत्यता की शक्ति होगी आप सोचो, सत्यता के वो सागर है। शिवम अर्थात कल्याणकारी हैं, परमात्मा कल्याण के सागर है, अथाह कल्याण चाहने वाले हैं। आत्माएं तो हद के कल्याणकारी होते हैं ना भाई, हद के कल्याणकारी। हम कभी कभी क्या होता है, अपने घर में कोई मेहमान आता है तो दो तीन दिन के बाद में कहते घुमा फिरा के भाई टिकट कब का है आपका जाने का, भाई तीन चार दिन के बाद ही हम पूछना शुरू करते हैं जी। बाबा जैसा मेरा इस संसार में कल्याण चाहने वाला कोई नहीं है। द्वापर युग से हमने बाबा को केवल गालियां दी, फिर भी परमात्मा कल्याण के सागर हमारा कल्याण करने के लिए आए है। दुनिया में ऐसा कल्याण चाहने वाला भाई नहीं है ना। और सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर, सुंदरम अर्थात परमात्मा सुंदरता के सागर है, सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इंप्यूरिटीज है, सब उसको मिटाने का प्रयास करते हैं, तो परमात्मा जो सबसे सुंदर है, सुंदरता के सागर हैं, वो सभी आत्माओं को सुंदर बनाते हैं। आप सोचो तो सही कितने सुंदर हो गए वो, है ना भाई। तो ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा का स्वरूप हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है, ठीक है ना। अब बाबा कहते हैं जितना मुझे आप पहचानते हो उतना ही प्यार मुझसे करते हो। भाई हमारे पास क्या है बाबा को देने के लिए? हमारे पास कुछ है? हम तो फकीर हैं, किराए का मकान लेके बैठे हैं, पांच तत्वों से और पांच विकारों से ये किराए का मकान लेके बैठे हैं। बाबा कहते तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझे दोगे? तो दिल के सच्चे प्यार की पूंजी आपके पास है, मैं उसका सौदा करने के लिए आया हूं। बाबा कहते हैं भाई करोगे प्यार का सौदा मेरे साथ? बाबा पूछ रहे हैं करोगे, हाँ या ना, जल्दी बोलो, पक्का? क्यों क्यों करेंगे ये बहने? ब्रह्मा कुमारी बहने कहती इसलिए करेंगे क्या? हाँ जी बोलो ना, क्यों बाबा के साथ ही प्यार का सौदा करना है चाहिए? लिखो पांच बातें। ये पांच बातें समझेंगे तो भूल से भी किसी आत्मा से व्यक्ति से वैभव नहीं, प्यार नहीं करोगे, केवल बाबा के साथ ही प्यार शेयर करोगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं, धोखे ही धोखे द्वापर युग से हमने खाए, बहुत कड़वे अनुभव किए। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, ठीक है भाई। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल लव है और अनकॉम्प्लिकेटेड लव है। आत्माओं के प्यार में तो कितने कॉम्प्लिकेशन, कितने कंडीशन है। अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, है ना भाई। परमात्मा के प्यार में तो कोई कंडीशन है ही नहीं, है कंडीशन? बाबा कहते हैं मुझे केवल सच्चाई चाहिए, सच्चे दिल पर साहब राजी। बस राह ऊपर वाला साहब को राजी करना है, दिल में सच्चाई रखो और कुछ नहीं, एरा फेरी प्यार के नहीं करना है, ठीक है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, आत्मा का प्यार तो हमें इम्प्योर बनाता है। तो अच्छी तरह से हमें क्या करना है, प्यार को बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है। तीसरी बात, तीसरी बात क्या बताई? पवित्र बनाता है, प्योर बनाता है, चढ़ते कला की अनुभूति करता है। और चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, प्यार के सागर है बाबा, और निस्वार्थ प्यार करते हैं। आत्माओं का प्यार तो स्वार्थ भरा होता है और हद का, वो तो सागर है, ये तो गागर है, वो भी खाली है, वो भी उछल रही है, क्या करेंगे प्यार भाई उनसे। तो बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। इस संसार में स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्यार करता ही नहीं है, केवल परमात्मा ही हमसे प्यार करते हैं, हमारे पास आते हैं और हमें प्योर दिल से प्यार करते हैं, प्यार का सौदा करते हैं, ठीक है ना। पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाते हैं, परम धाम की ओर ले जाते हैं। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, लटकाता रहता है। तो इन पांच बातों को अगर हमें रियलाइज करते हैं तो कभी भी हमारा प्यार बाबा की तरफ नहीं जा सकता है, ठीक है। इन पांच बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है। अभी बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए हमें विधि को समझना है। विधि बड़ी सरल है, स्वयं को आत्मा समझना है और आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर हमें फोकस करना है। बुद्धि से बाबा को देखना माना, बाबा से कनेक्शन जुट जाना। जैसे बाबा को हम देखते हैं बुद्धि रूपी नेत्र से, तो कनेक्शन जुड़ते हैं और शक्तियां आत्मा में आने लगती है, शक्तियां आने लगती है। और जैसे जैसे शक्ति आती है वैसे वैसे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, ऊर्जा की लेवल बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एकांत में बैठकर हमें क्या करना है, बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना है परम धाम में या सूक्ष्मोतन में। फिर मन से मनमना भव का मंत्र का जाप करना है। तो हमें लक्ष्य रखना है जास्ती से जास्ती समय हमें बाबा के घर में ये तत्व का प्रयोग करने के लिए बैठना है, अभ्यास करना है। ठीक है, मान लीजिए बुद्धि से बाबा को याद कर रहे हैं, थोड़ी देर तक कनेक्शन आपका जुटा हुआ है, बाद में कनेक्शन टूट जाता है, तो टूटा हुआ कनेक्शन एक सेकंड में कैसे प्राप्त करेंगे भाई, कोई विधि है बोलो। हैं जी, टूटा हुआ कनेक्शन एक सेकंड में कैसे प्राप्त करें, उसकी विधि क्या है? देखो बुद्धि हमारी कहीं और चली गई है, बाबा पर नहीं है, चेक करो और चेंज करो, बाबा पर बिठा दो, चेक करो और चेंज कर दो, बाबा पर बिठा दो। तो बाबा को बिठा दिया तो बाबा से तो कनेक्शन आते जाएगा, हमें करंट मिलता जाएगा बाबा से, है ना? तो इस तरह से हमें बाबा को बहुत अच्छी तरह से याद करते जाना है। तो चलो हम सभी बहुत अच्छी तरह से बाबा को 15 मिनट के लिए याद करें, तो सब खड़े हो जाएंगे। बहने भले बैठो, सब खड़े हो जाएंगे।
बाबा।
अभी सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, थोड़ा दूर दूर होके बैठो, टच नहीं शरीर होना चाहिए, एकदम 15 मिनट पावरफुल योग, एकदम पावरफुल योग करेंगे हम। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा दिव्य ज्योति के रूप में जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों फैल रही है। मौज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों ओर दिव्य प्रकाश का औरा आभा मंडल अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को, निराकार स्वरूप को, दिव्य स्वरूप को दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान हर रोज मुरली में मेरे भाग्य के गीत गाते ही रहते हैं। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस देह रूपी चैतन्य ज्योति से न्यारी होकर मैं आत्म ज्योति दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इस सृष्टि रूपी गोले से पार जा रही हूँ। चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही। ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई जा, चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति है। मौज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भगटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे। पाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, दे रहे। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूं। आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा मुझे बड़े प्यार से मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं, ज्ञान स्नान योग स्नान कराते हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नर छाया हुआ है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओह मेरे प्यारे सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान हैं। उनकी दृष्टि मेरे पर पड़ रही है। पावा ज्ञान सूर्य है, पावा शक्तियों के सागर भी हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सजीव किरणें मुज आत्म ज्योति पर पड़ रही है और मेरी ऊर्जा के लेवल बढ़ती जा रहे हैं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ, सुखद अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ, ज्ञान सूर्य की तपद में तप रही हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस बुद्धि रूपी विमान में बैठकर रूपी विमान में बैठकर आकारी दुनिया की ओर उड़ती आ रही हूँ, उसके बाद साकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन बुद्धि रूपी विमान में बैठकर पधार रही है। बहुत अच्छी तरह से मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और इस साकारी शरीर में ब्रह्मकोटि के मध्य विराजमान हो चुकी हूँ। मोज शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगें इस वायुमंडल में चारों फैल रही हैं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु हैं, वैसे मेरा भी स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। ओम शांति शांति शांति। योग को योग कहते हैं भाई, योग को योग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? हाँ जी, हाँ, योग का उल्टा क्या है? गयो। जब हम आंखें में बैठते हैं ना योग में, तो आंखें ऊपर चली जाती है हमारी। योगियों की आंखें हमेशा आधी खुले दिखाते हैं। क्यों? योगी इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखता है, उसका तीसरा नेत्र कहीं और दूर बाबा की याद में, इष्ट की याद में खोया रहता है। आंखें दिखाई देते हैं, आंखों में दिखाई देता है। बाबा की झोपड़ी में जब बाबा से मिलने जाता था कोई भी, जब बाबा की कर्मांत स्थिति थी, तो बाबा के नैनों से लगता था बाबा केवल तन से यहां बैठे हैं। मन से बाबा ने शिव अपने को शिव बाबा के पास में ट्रांसफर कर दिया है, है ना भाई? मरियालगुड़ा की इंचार्ज कौन है? आई बहन जी, कौन इंचार्ज है? कौन आई है? कौन है, किधर है? शकुंतला दीदी, कौन है ये? भाई ये दीदियों के लिए, हमारी दीदियों के लिए, सबके लिए तालियां बजाओ जरा अच्छी तरह से। क्यों तालियां बजानी चाहिए? ये दीदियों के ही आशीर्वाद से आप यहां पहुंचे हुए हैं और ये सारे सृष्टि के ग्लोब पर मधुबन सबसे पावरफुल स्थान है। इस स्थान पर लोग चार धाम करने के लिए आते हैं और आपको चार दिन के लिए यहां बैठने का, मिलने का, तपस्या करने का चांस मिला। ये भाग्यशाली है ना, बताओ भाग्यशाली। तो इन दीदियों का ही तो आशीर्वाद हमें मिला है ना, ठीक है ना? और जब बाबा निमंत्रण देते हैं विशेष भट्टी के लिए, तो बाबा बच्चों की खातरी करते हैं। कैसे खातरी करेंगे? किसी के घर में जाते हैं तो अच्छी चीजें खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, ऐसे खातरी करते हैं ना। अब बाबा यहां खातरी कैसे करेंगे बताओ? बाबा जो भी बच्चे घर में आते हैं उनको बहुत सुंदर योग के अनुभव कराकर खातरी कराते हैं। इसलिए आप बहुत मस्ती में बहुत अच्छी तरह से अनुभव करने का मौका आपको मिला है, ठीक है? ओम शांति है।